ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ.
ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ, ಜಯ ಗೋಪೀಜನ ವಲ್ಲಭ ಗಿರಿವರ ಧಾರಿ, ಜಯ ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಶೋದನಂದನ ವ್ರಜ ಜನರಂಜನ, ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚಾರಿ, ಯಮುನಾ ತೀರ ಬನ ಚಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ರಾಧಾ ಮಾಧವ ಕುಂಜ ವಿಹಾರಿ, ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದ, ಜಯ ಶ್ರೀ ಜಯ ಶ್ರೀ ಕೃಷ್ಣ ಚೈತನ್ಯ ಪ್ರಭು ನಿತ್ಯಾನಂದ, ಶ್ರೀ ಅದ್ವೈತ ಗದಾಧರ ಶ್ರೀವಾಸಾದಿ ಗೌರ್ಭಕ್ತವೃಂದ, ಕೃಷ್ಣ ಹರೇ ಹರೇ, ಹರಿ ರಾಮ ಹರೇ ರಾಮ, ರಾಮ ರಾಮ ಹರೇ ಹರೇ, हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे
हरे कृष्णा हरे
कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे निताई कौर हरि बोल हरि बोल हरि बोल हरि जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। इसकन संस्थापक आचार्य भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद महाराज की। नित्य लीला प्रविष्ट जय ओं विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज प्रभुपाद की। अनंत कोटि वैष्णव भक्त वृंद की। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद की। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जी गोपाल भट्टदास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। जय श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्री राधा कुंड श्याम कुंड गिरिराज गोवर्धन जी महाराज की। जय श्री श्री ब्रज वृंदावन धाम की। श्री नवदीप मायापुर धाम की। श्री क्षेत्र श्री पुरुषोत्तम धाम की। श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा सुदर्शन की। श्री द्वारिका धाम की। श्री बद्रिका धाम की। श्री अयोध्या धाम की। गंगा देवी यमुना देवी की। वृंदा देवी तुलसी महारानी की। युग धर्म से हरिनाम संकीर्तन की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत भक्त वृंद की। समवेत गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो
भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयं उदीरयेत्। हरे कृष्ण। तो भगवान श्री राम के जन्म जयंती उपलक्ष्य में आप इस्कॉन जोधपुर की तरफ से जो ये त्रिदिवसीय भगवान राम की चर्चा के लिए इच्छा प्रकट किए हैं, आजकल परसों तीन दिन ना जन्म रामनवमी तो परसों ही है, इसके बाद में तो कंक्लूजन होगा कुछ, है ना। भगवान के आविर्भाव तो परसों ही है, तो आविर्भाव के उपलक्ष्य में कर रहे हैं ना। तो इसके लिए आप लोग को सब धन्यवाद है। तो भगवान श्री राम के चरित्र श्रीमद् भागवत महापुराण में श्री व्यासदेव जी ने भी उल्लेख किए हैं। श्री भागवत महापुराण के नवम स्कंद में दो अध्याय भगवान रामचरित संक्षिप्त में व्यासदेव जी ने समरी लिखे हैं। ऐसे तो भगवान राम की चरित लीला प्राय अभी तक सृष्टि के जितने भी भगवत अवतार और हुए हैं उनके जितने जितने लीला हुए सबसे अधिक सर्वश्रेष्ठ प्रचारित प्रसारित भगवान राम के चरित है। उनके समान अनपरालाल उनके समान के समान नहीं। यहाँ तक कि हम देखते हैं ब्रज में कृष्ण लीला करते हैं, लीला में जो लीलाकारी जो लीला प्रस्तुत करते हैं उसमें नंद बाबा होते हैं, जसोदा होते हैं और गोप गोपियाँ होते हैं। वो जो लोग स्टेज में आते हैं ड्रामा करते समय तो एक दूसरे को मिल करके राम राम जी राम राम, कृष्ण जन्म नहीं हुए तो तभी से अभी नंद बाबा के वहाँ नंदन प्रकट ना भाई तभी से राम राम करते थे। तो बहुत प्राचीन कृष्ण की जन्मभूमि में भी राम की महानता, एक दूसरे को अगर ग्रीट करते हैं, हम तो इस्कॉन वाला हरे कृष्ण बोलते हैं लेकिन वो तो भगवान के पिताजी राम राम बोलते थे। राम शब्द इतने प्रचलित है, इतने प्रचलित है, इतने पुराना है। मैं तो उस दिन बता रहा था राम शब्द हमारे समाज में लोगों में इतने छाया हुआ है कि राम शब्द के उच्चारण के लेकर विभिन्न प्रकार के भाव को प्रकट करते हैं, किया जाता सकता है ना। नहीं अब केवल राम कहें किसको बुला रहे, राम को नहीं दे खड़ा हो जाएगा बुला रहे सर, संबोधनार्थे एक राम शब्द उच्चारण करेंगे तो संबोधन अर्थ होगा। अगर उसमें हे लगा कर थोड़ा और लंबा सा हे राम, ये अद्भुत प्रकट हो, अद्भुत रस प्रकट है, रियली है ना। दो अर्थ, अगर दो शब्द राम राम कह दे तो ग्रीटिंग्स राम राम जी, हाँ राम राम, राम राम भैया, एक दूसरे को अभिवादन करने का जो भाव है वो राम शब्द दो बार उच्चारण करने से, वो बोलेंगे नहीं बुला रहे तो अभिवादन कर रहे, हाँ राम राम जी राम राम। अगर तीन बार राम शब्द को उच्चारण कर दे तो घृणा, री राम 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 वो ऐसा कह राम 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 प्रसाद ऐसा बना रहे क्या कहूं राम राम राम। अरे राम ही की नाम ही तो है लेकिन तीन बार करने से घृणित अर्थ। अरे छोड़ो कहो मत उसका बात ही मत कहो राम राम उसका बात मत। और अगर उसको चार बार उच्चारण कर दे तो बोले तो जप कर रहा है राम 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 चार या अधिक करो तो फिर बोले जप कर रहा है राम नाम जप कर रहा है जापक है। तो क्योंकि इतने लोक में प्रचलित है वो उसी को इसे व्यवहार करते हैं। तो जब भगवान व्यासदेव ने रामचरित लिखते हैं तो मतलब रामलीला का कितने, और सुखदेव गोस्वामी जब परीक्षित महाराज को भागवत कहते थे कह करके अभी कृष्ण लीला का पुंखानुपुंख वर्णन जो दसम स्कंद में होगा उसके पहले नवम स्कंद का कंद में जब वंश वर्णन वंशानुचरित वर्णन करते थे तो उसमें सूर्य वंश के वर्णन आया तो उसमें भगवान राम आए। रघुकुल तिलकंग रघुकुल, तो सुखदेव गोस्वामी ने नवम स्कंद के दसम अध्याय शुरू किए, नौ में ही शुरू किए क्योंकि भगवान हमेशा नौ में ही रहते हैं। राम राम मर्यादा है, राम भगवान राम किसे हैं मर्यादा पुरुषोत्तम, मर्यादा जानते ना, मर्यादा मीन्स लिमिट सीमा है। तो जितने एक अक्षर वाले अंक है उनका लिमिट क्या है? अरे नौ ही तो है, नौ के बाद कोई डिजिट कहो तो दो हो जाएगा, एक नहीं रहेगा। वन एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ है तो सब एक एक डिजिट वाले है। नौ दी लिमिट मर्यादा है, उसके बाद मर्यादा व्यतिक्रम होगा दो डिजिट हो जाएगा, है ना? नहीं, नौ ही मर्यादा रखता है अंक का, अक्षर का, अंक का, संख्या का मर्यादा नौ है। और नौ ऐसे मर्यादा रखा करता है कि नौ में तुम नौ गुना करो, नौ में कुछ भी करो, नौ के साथ नौ जितने मिलाओ अपने नौ में रहेगा, अपने लिमिट में रहेगा। आप नौ में एक गुना करो नौ ही तो रहेगा, दो गुना करो अठारह, आठ एक नौ, तीन गुना करो सात दो नौ, नौ में चार गुना करो छः तीन नौ, पाँच गुना करो पाँच चार नौ, फिर छः फिफ्टी फोर नौ, सात गुना करो सिक्सटी थ्री नौ, आठ गुना करो सेवेंटी टू नौ, और नौ गुना करो एट्टी वन वो भी नौ, दस गुना करो नौ सौ वो भी नौ। कभी बाहर जाते नहीं, हमेशा अपने मर्यादा में रहते हैं, ना नीचे ना ऊपर, इसीलिए उनकी मर्यादा पुरुषोत्तम। और ये नहीं उनके सती भगवती सीता भी नौ, सीता भी नौ में है, हमारे लाला तो आठ में है, वो भी लाली भी आठ में, वो भी आठ में, हाँ राधा कृष्ण दोनों आठ हैं लेकिन वो तो नौ में है, लिमिट मर्यादा में रहते हैं, बिल्कुल मर्यादा में, केवल नौ से नीचे नहीं ना ऊपर नहीं। लेकिन अब आठ को अगर गुना करके देखेंगे आठ में एक से नौ तक सारे हैं क्योंकि सर्वस्व सब सब उनमें ये एक भी रहने वाले नहीं, जितने सारे बदमाशी करना जितने सारे करना सब करना सब कर देते, तो एक से नौ तक आठ अंक में रहेगा। तो इसलिए भगवान ने उसको बोले सर्वगुण का ये परिपूर्ण अवतार है, सब है, एक केवल एक में क्यों रहो, एक से लेकर जितने अंक है सारे उनके उनके। तो इसलिए भगवान अपनी मर्यादा में रहते हैं नौ में, तो इसलिए भागवत नवम स्कंद में, और कोई स्कंद नहीं चुन करके नवा स्कंद में ही रखे उसको क्योंकि नौ वाले है ना वो अपने सबसे श्रेष्ठ पुरुष है, सबसे श्रेष्ठ हैं, और उसके ऊपर फिर अपने मर्यादा प्रतिक्रमण नहीं करेंगे तो इसलिए मर्यादा का सबसे टप में वहीं रहेंगे। तो नवमस्कंद में नवमस्कंद में जब वर्णन उनका करते हैं तो बोलते हैं कि उनके वर्णन तो फिर दसवां में किए नाइन्थ कांड में टेंथ चैप्टर में ही सुखदेव जी शुरू करते हैं प्रथम स्कूल में। खट्वांग दीर्घ बाहुश रघुस्तत्तमात्पृथुस्रवा अजोस्ततो महाराज ततस्तस्मात् दशरथो भवत्। सुखदेव गोस्वामी ने कहा महाराज खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु, फिर दीर्घबाहु के पुत्र विख्यात महाराज रघु हुए और महाराज रघु से उत्पन्न हुए अज और अज से महापुरुष दशरथ हुए। जो रघुवंश है ये दशरथ जी के दादाजी थे ना, दादाजी होंगे ना, हाँ अज के पिता रघु भगवान राम के नानाजी है तो उनके वंश उनका नानाजी से चलता था। जो कोई वंश में कोई विख्यात प्रसिद्ध पुरुष आ जाए तो उसी का नाम से ही परिचित होता है वंश। यद्यपि वो बात पहले इक्ष्वाकु वंश व्यवस्था ऐसे कहा जाता है लेकिन रघु इतने प्रख्यात हुए कि उन्हीं के नाम से वंश नामित हुआ। तो बाद में कहते हैं सुखदेव जी तस्यापि भगवान एस सख्यात ब्रह्ममयो हरि अंशान सेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थित सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। ये भगवान की जन्म के लिए ये सुखदेव जी ने बात कहते हैं कि इसी वंश में खट्वांग के वंश में इस प्रकार दीर्घबाहु रघु अज और दशरथ हुए। दशरथ के पुत्र के रूप में भगवान स्वयं आए। तस्यापि भगवान एस, उसको हम अनुवाद और तात्पर्य पढ़ लेते हैं, श्लोक को उच्चारण करेंगे अपने। तस्यापि भगवान एष
तस्यापि भगवान एष
साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः
साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः
अंशान सेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। बोलिए
तस्यापि भगवान एष
साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशान सेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशान सेन चतुर्धागात् पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशान चतुर्धागात् प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। बोलिए तस्यापि भगवान् एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंशान चतुर्धागा प्रार्थितः प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत दुग्ना इति संगया बोलो तस्यापि भगवान एष साक्षात् ब्रह्ममयो हरिः अंसांसेन चतुर्धागा रुद्रत्वं प्रार्थितः सुरेः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्ना इति संज्ञया। और कोई नहीं। तस्य महाराज दशरथ के अपि भी भगवान भगवान एष ये सभी साक्षात प्रत्यक्ष ब्रह्ममय हरि परम सत्य भगवान अंशान से न पूर्ण अंश के अंश से चतुर्धा चार प्रकार के विस्तार अगात स्वीकार किया पुत्रत्वम पुत्र बनना प्रार्थितः प्रार्थना किए जाने पर सुरेहि देवताओं के द्वारा राम लक्ष्मण भरत भगवान राम लक्ष्मण और भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया तथा शत्रुघ्न इति विभिन्न नाम से अनुवाद देवताओं द्वारा प्रार्थना करने पर परम सत्य भगवान आपने अंश तथा अंशों के भी अंश के साथ साक्षात प्रकट हुए उनके पावन नाम थे श्री राम श्री लक्ष्मण श्री भरत तथा श्री शत्रुघ्न। ये सुविख्यात अवतार महाराज दशरथ के पुत्र के रूप में चार स्वरूप में प्रकट हुए। तात्पर्य भगवान रामचंद्र तथा उनके भाई लक्ष्मण भरत एवं शत्रुघ्न ये सभी जीव तत्व न होकर विष्णु तत्व है साक्षात ब्रह्ममयो हरि। ये पहले ध्यान रखना चाहिए हम किसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। हमारे जैसे ऑर्डिनरी राजा ऐसे कोई नहीं, ये सब भगवान है चारों का चार। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान अनेकानेक रूप में अपना विस्तार करते हैं। अद्वैतम अच्युतम अनादिम अनंत रूपम यद्यपि वे सभी एक ही है किंतु विष्णु तत्व के अनेक रूप एवं अवतार होते हैं। जैसा कि ब्रह्म संहिता में पुष्टि की गई है रामादि मूर्ति शुक्ला नियमेन तिष्ठन भगवान अनेक रूप में विद्यमान है यथा राम लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न और ये रूप उनकी सृष्टि के किसी भी कोने में स्थित हो सकते हैं। ये सभी रूप स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर के व्यष्टि रूप में विद्यमान रहते हैं और ये समान शक्तिशाली अनेक दीपकों के तुल्य होते हैं। भगवान रामचंद्र लक्ष्मण भरत तथा शत्रुघ्न ये सभी विष्णु तत्व होने के कारण समान शक्तिशाली है। देवताओं की प्रार्थना करने पर ये महाराज दशरथ के पुत्र बने। तो ये जो चार दशरथ नंदन हुए इन चारों के प्राकट्य के कथा श्री सुखदेव गोस्वामी ने राजा परीक्षित को कहते हैं और इसमें विशेष करके सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हे राजा ध्यान दो ये जो चारों हैं दशरथ नंदन हुए दशरथ के पुत्र हुए साक्षात ब्रह्ममयो हरि ही ये साक्षात परम ब्रह्म है भगवान है। ये कोई साधारण पुरुष ऐसा मृत्युलोक में आगे पैदा हुए उनके घर में करे ऐसा ना समझो वो साक्षात भगवान है साक्षात ब्रह्ममय हरि। और अंशान से न चत भय भगवान उनके आए क्यों क्यों आए सब साक्षात भगवान है दशरथ के बेटा बनकर क्यों है भाई बोलते प्रार्थित ही सुरे ही पुत्रत्वम चतुर्धागात अंशांशन, भगवान अपने अंश और अंशक भी अंश उनके सब मिल करके देवगण जो प्रार्थना किए देवताओं के प्रार्थना से ये उनके पुत्र तक को स्वीकार के पुत्र बनने के लिए राजी हुए, पुत्र बनने के लिए राजी हुए। और वो जो चार पुत्र थे उनके नाम हुआ था जो सख्यात हरी हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न। और प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में कहते हैं यद्यपि ये चारों विष्णु तत्व हैं और चार भाई के रूप प्रकट हुए, लेकिन उनमें वो चार अलग अलग नाम है, लेकिन हम किसी को किससे कोई कमी महसूस नहीं करना चाहिए, वो चारों समान शक्तिशाली है विष्णु तत्व होने के नाते, और चारों शक्तिशाली सर्वव्यापी सर्वसमर्थ हैं, है ना। भगवान अनेक रूप में विद्यमान है जैसे राम लक्ष्मण शत्रुघ्न आदि, और वे कहीं भी स्थित हो सकते हैं। ये सभी स्थायी रूप से शाश्वत रूप से ईश्वर है, ऐसा नहीं कि अभी हुए बाद में, नहीं, ऑलवेज नित्य स्थायी शाश्वत भगवान है। और ये सभी समान शक्तिशाली हैं, जैसे अनेक दीपक के तुल्य होते हैं। दीपक के उदाहरण दिया गया विष्णु तत्व को समझाने के लिए, ब्रह्मा जी भी यही उदाहरण दिए थे, दीपार्चरे वही दशांतरम अभ्युपित्य दीपायत विवृत हेतु समान धर्मा, है ना। नहीं, भगवान गोविंद और उनके जितने और अवतार हैं उनके बारे में जो ब्रह्मा जी को बोलना हुआ तो ब्रह्मा जी यही श्लोक बोले थे, दीपार्चरे वही दशांतरम अभ्युपित्य दीपायत विवृत हेतु समान धर्मा। आप दीपावली के उत्सव में भी और कभी भी अब कई सारे दीप लगा दो घर में, सकड़ो दीप लगा दो और सारे दीप के पास जाकर देखो, सभी समान धर्म, सब में तेल है, साइज सेम है और एक है जलता लाइट, किसमें फर्क नजर आएगा क्या। दीप तो दीप ही है, सारे समान, सब दीप समान है, समान धर्म, सभी के धर्म समान है, सब समान सकते। लेकिन दीपायित विवृत हेतु समान धर्म, दीप प्रज्वलिति दीप के रूप में उनके धर्म के रूप में सभी समान हैं, सभी आलोक देते हैं जिस प्रकार जलते हैं तेल से, लेकिन उनमें से उन दीप में से एक दीप होगा, अगर कुछ चिंता करे 100 दीप जल रहे हैं, बोले दीप 100 तो जल रहे हैं, सब समान लाइट दे रहे हैं, लेकिन इन दीप में कोई एक पहले जला था बाकी उस दीप से सभी जले, या एक साथ में सब जले, एक साथ में सब जल ही नहीं सकते, एक एक करके जलाया होगा, कोई एक पहले के दूसरे को तीसरे तीसरे हो सकता, और ऐसे हो सकता कोई एक दीप आदिकाल हो सारे दीप को ही लाइटेड किया, उन्हीं के लाइट से लगा, आजकल तो अब माचिस में तो लाइटर में लगा देते हैं, वो भी दीप ही है। तो बोलते हैं एक दीप जो था पहले से था और उनसे ये सकड़ दीप को लाइटेड कराया गया, लेकिन अभी उनको उनको समान रखे हैं, लेकिन कोई पहचान नहीं सकता भाई यही पहले था ये नहीं था, कोई नहीं कह सकता समान धर्म। ठीक इसी प्रकार जहाँ तक मैंने सुना हूँ कि राम लक्ष्मण शत्रुघ्न और भरत, भरत और शत्रुघ्न ये सब का बर्थ डेट एक ही दिन है ना, आप लोग ज़्यादा सब पढ़े होंगे रामायण, अलग अलग डेट है क्या, एक ही दिन मना, हम केवल रामनवमी मनाते हैं भाई, लक्ष्मण नवमी शत्रुघ्न भरत की नवमी तो करना ही पड़ेगा भाई, भाई ये जो भगवान है सारे समान शक्ति है तो उनके बर्थ डे भी हुई है, कोई अलग दिन है क्या, नहीं है ना। समय में थोड़ा अंतर हुआ होगा, कुछ मिनट कुछ सेकंड ऐसे हुआ होगा, लेकिन लगभग उनके जो दशरथ ने जो उनको दिए, आप तो सुने होंगे ना, जो खीर दिए उनको यज्ञ से जो प्राप्त हुआ था उनको, उनसे तो एक ही दिन दिए सबको, लेकिन हम उनको बड़े छोटे क्यों मानते हैं, क्योंकि वो खीर के हिसाब परिमाण के हिसाब से ये उनको आधा दिए थे, उनको चौथा दिए थे, इसी के हिसाब से एक कला के हिसाब से हम उनको बड़े छोटे महान मानते हैं, लेकिन है ही सभी बात एक ही दिन के जन्म भय और एक ही सब शक्तिशाली, कोई काम एक ही है, पुरुष का अवतार के रूप में वही पुरुष है, लेकिन वही पुरुष होते हुए भी फिर अंतर कैसा है, लेकिन जैसे आप सब स्कंद जोधपुर के ब्रह्मचारी हैं, लेकिन एक ब्रह्मचारी कार चलाता है, एक साइकिल चलाता है, एक मोटर बाइक चलाता है, तीनों तो है, एक ही रूम में रहते हैं, लेकिन एक पास फोर व्हीलर, एक पास टू व्हीलर, एक पास वो क्या बताऊँ क्या व्हीलर है थ्री व्हीलर भी खड़ा है देखा है वो क्या चलाते क्या कोई है आप में से थ्री व्हीलर वाला है कोई है? अरे बाप रे वो भी आ सो टू थ्री फोर तो अंतर तो देखते हैं ना उसमें, उनका यदि भी है सेम, एक ही रूम में रहते, रूममेट है, एक ही कपड़ा पहनते, एक ही तिलक, सब कुछ एक ही है, लेकिन फोर व्हीलर चलाता है, ये थ्री व्हीलर है, टू व्हीलर, और पैदल में जाता है, उसको क्या उनका नाम आप नहीं पुजारी जी, वो तो खूब चला दो वन व्हीलर ये तो एक व्हीलर रूम से अल्टर अल्टर से रूम उनको है ना नहीं। तो इसलिए यद्यपि चार प्रकार के हो लेकिन एक ही तो है, सब बोले स्कंद जोधपुर के डिवोटी है ना, बोलते ना, लेकिन एक ही होते हुए तो इसी प्रकार यद्यपि सभी विष्णु तत्व हैं, सब भगवत अंश हैं, भगवत स्वरूप हैं, समान सामर्थ्य वाले हैं, लेकिन फिर भी आपने अपने काम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए अपने अपने गाड़ी ले रखे हैं, अपने अपने अधिकार ले रखे हैं। तो भगवान राम में सबसे ज़्यादा अधिक गुण है, सबसे ज़्यादा अधिकार है, क्योंकि 50% वो लेकर आए हैं, बाकी सब कोई चाराना कोई दीवाना है ना नहीं, शत्रुघ्न भरत सो दो दीवाना चाराना है, कोई 50% लेके बाकी 50 बढ़ गया ना, बाकी 50% को डिवाइड कर दिया, चाराना चाराना हो गया है ना नहीं, तो चाराना दे दिया लक्ष्मण को, बाकी दो भाई चाराना को दो दीवाना कर ले लिया और क्या, लेकिन है ही सभी भगवान। तो अपने अपने जो सामर्थ्य जो काम करेंगे, इसी काम के अनुरूप शक्ति जो उनको लेकर आए, शक्ति सभी ला सकते थे, लेकिन तू ये काम कर, तू ये गाड़ी चला, तू फोर व्हीलर लेकर जाए, सब्जी मंडी में जाना है ना, लेकर हाँ तू लेकर आ, मैं तो उनसे मिलने जाता हूँ, मैं बाइक में चला जाऊँगा, तुझे भी वहाँ से सामान लेकर आना है तो थ्री व्हीलर लेकर जा, मुझे तो पूजा ही करना है, मैं तो यहीं रहूँगा। तो है सभी समान, सब कर सकते थे, लेकिन अपने अपने दायित्व के हिसाब से अपने अपने कर ली, और हम इसमें मान सकते हैं, लेकिन है ही कि तो इसी प्रकार ये चारों विष्णु तत्व हैं, और चारों एक साथ में प्रकट हुए, यद्यपि माँ अलग अलग थे, लेकिन पिता एक होने के नाते उनको सब भाई माना गया, और सहोदर अनुज माना ही जाएगा, तो क्योंकि पिता तो एक ही है, स उदर नहीं है, केवल सहोदर के रूप में तो लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न माना जाएंगे, एक ही उदर से हुए, लेकिन एक ही वीर्य से हुए दशरथ महाराज, किसके नाते, पिता के नाते चारों भाई हैं, और एक ही दिन में प्रकट हुए, सब दशरथ नंदन कहलाएंगे, और वो आए केवल देवताओं ने प्रार्थना किए, देवताओं ने प्रार्थना की, देवताओं क्या पड़ी थी भाई, क्यों प्रार्थना की उनको, बोले कि बेटा वरुण का जन्म हो। तो रामायण के वर्णन इस प्रकार शुरू होता है कि वाल्मीकि ऋषि ने, महर्षि वाल्मीकि ने जो रामायण लिखे 26,000 श्लोक विशिष्ट, तो इसमें शुरुआत में देखा जाता है वाल्मीकि जी एक साधु आदमी नहीं थे, ऋषि नहीं थे, महर्षि नहीं थे, वो तो एक डकैत सरदार थे, डाकू सरदार थे, जिनका नाम था रत्नाकर। अब देखिए साधु संघ से काम बनता है, नारद जी के पल्ले पड़े, नारद जी की लूटपाट करने के लिए पड़े थे, नारद जी बस था कुछ नहीं है, ये तो ब्रह्मचारी थे बेचारे, लेकिन फिर भी वो उनके साथ छेड़खानी किए, नारद जी बोले भाई देखो तो है नहीं, तू मानता नहीं, ऐसा करो, तुम इतने क्यों करते हो, लोग मारता लूटता पीटता है, मेरा परिवार चलता है, उसमें मेरा मेंटेनेंस है, यही मेरा जॉब है, बोले तो करता लेकिन इतने लोग को लूटता है मारता है, लेकिन ये पाप होता है ना, ना पाप होने से परिवार सब बांट के लेते, मैं अकेले थोड़ी लेता हूँ। हम बोले कोई नहीं लेंगे भाई, तेरे कमाई से बांटते हैं सब, लेकिन पाप को कोई नहीं लेगा, हैं ऐसे किसे खाएंगे लेंगे नहीं, ना जा पुष्कर का तू ही सारे भोगेगा, सभी के पाप तू ही भोगेगा। नहीं ऐसे कैसे, वो माना नहीं। वो जाकर जब पता लगा करके आया तो उनको कन्फर्म हो गया कि भाई फल लेने के लिए सब, लेकिन कष्ट लेने के लिए कोई राजी नहीं है। सब अपने दो थे, तू बेटा है तेरा काम है, तू पिता है तेरा काम है, तू पति है तेरा काम है, तू भाई है तेरा काम है, हमारा थोड़े तू लाता हम चले, लेकिन पाप हम लेंगे बिल्कुल नहीं। और ये तो सीरियस हो गया, आकर बोला अरे बात सही है, हमें तो पता नहीं कितने से पाप करना, तो फिर ना कोई उपाय है। तो उपाय है क्या, उपाय है इतने दिनों से इतने पाप करते आया हूं, मर्डर करना, चोरी करना और पाप धन को खाना, ऐसे इतने ट्रिपल सेंस में पाप चल रहा है, तो कोई दिन बाकी नहीं रहा। अरे बिल्कुल वो सीरियस हो गया, डरने लगा, बोला कोई उपाय है ऐसे महापाप से बचने के लिए, त्रिगुणित पाप है। नारद जी बोले हाँ हो जाएगा, तो महापातक नाशनम, उनको पापनाशिनी महामंत्र दिए, बोले तू आप राम नाम लो, राम नाम दो अक्षर है इतने मधुर, वो इतने शक्तिशाली है। उस दो अक्षर को उनको दिए, बोलेगा बोलो करके, लेकिन गड़बड़ की बात है बोल नहीं पाए। राम शब्द उच्चारण कोई मात्रा ही नहीं है उसमें, कृष्ण शब्द में तो फिर री फड़ा है, थोड़ा बहुत दिक्कत है, गड़बड़ होता है उच्चारण में, इसलिए कोई किशन, कोई कृष्ण, कोई कृष्ण है ना, नहीं कितने प्रकार बोलते हैं। राम तो इधर उधर कोई बोल ही नहीं सकते, लेकिन फिर भी बोलते हैं राम राम। ऐसे बोलते ना कई प्रकार के, कई स्टेट के लोग कहते बोलते राम माँ में जोर दिया जाएगा, लेकिन बाकी लोग हिंदी भाषी तो राम माँ में हरंत मार देंगे, राम रहेगा थोड़ा माँ में हलंत, राम राम राम। लेकिन बाकी उड़ीसा बंगाल चाहे तो राम राम, वो राम हलंत मार करके माँ में उच्चारण करेंगे। तो है जो कोई प्रकार हो, लेकिन वही दो अक्षर इतने सरल है सहज, उसको उच्चारण करो, लेकिन उनसे नहीं हुआ। इसे व्याकरण के हिसाब से राम ऐसे कहना उचित है, जो कोई शब्द उच्चारण होता है उसका अंत में कोई मात्रा नहीं है, कोई मात्रा नहीं है किसी प्रकार के, तो उसको इस हंत के रूप से माना जाता है, सट में माना जाए राम राम कहने से नहीं हो, फिर वो दूसरा अर्थ हो जाएगा अकार आ जाएगा उसमें, क्योंकि अकार नहीं है। लेकिन कई कई मानते हैं कि व्याकरण हिसाब है अकार भी होना चाहिए, राम उसको कुछ है नहीं तो अ तो होगा ही, अकार अंत अंत में अ है तो जो भी हो तो उसको उच्चारण नहीं कर पाए। और नारद जी तो सुपर फिजिशियन थे, वो देखे दवाई काम नहीं करता, अल्टरनेटिव क्या करूँ, वो देखे दवाई काम नहीं करता है, अपना आसन मेडिसिन तो ही था, वो अति आसान था, सब जगह मिल जाता था, इजीली अवेलेबल जो है, ऐसा दवाई नहीं देखते कि जो मिलेगा नहीं, अरे कहाँ ढूंढो, ये करो बनाना पड़े, नहीं मिले नहीं, इजीली अवेलेबल हर जगह पर। ऐसे थे वो भी नहीं बना उनसे, तो अल्टरनेटिव किए, बोले कोई बात नहीं अल्टरनेटिव, उसी को उल्टा कर देते, वही दवा को उल्टा कर, उल्टे सीधा किसी भी हिसाब से भगवान राम, क्योंकि मर्यादा है ना, चाहे उल्टे में करो चाहे सीधे में करो, चाहे गुणा करो चाहे प्लस करो चाहे माइनस करो चाहे डिवाइड करो, रहेंगे कि में, तो इसलिए बोले तुम सीधा बोलो चाहे उल्टा बोलो काम वही होगा, क्योंकि मर्यादा है उनका, वो मर्यादा नहीं छोड़ने वाले, उनका मर्यादा है कोई किसी भी प्रकार से, बाल रूप से हो, युवक रूप से हो, बड़े रूप से हो, राजा रूप से हो, वो वनवासी रूप से हो, किसी भी रूप से, किसी भी प्रकार से, किसी भी स्थिति से कोई उनका पास आए, उनका तो स्वभाव है उनको अपनाएंगे, उनको शरण में लेंगे और उनको धार करेंगे, भय मुक्त करेंगे, ये भगवान राम के सहज स्वभाव है। इसलिए बोले कि नारद जी को पता था, उल्टा सीधा नहीं पर उल्टा करो, उन्हें उल्टा भी कर भरोसा बोले कि तो मर्डर खूब कर मारता था ना, मारते मारते मेरा काम ही था मैं मार पीट करना। तो बोले राम नहीं बोल सकता ना, होता नहीं मेरे से जी, बोलते बोले मरा मरा मारता हूँ मरूंगा बोलूंगा। तो माँ से शुरू कर दिया, रास नहीं हो पा रहा था, माँ से शुरू किया। अब कैसे राम हड़ंत हो जाना, मरा 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 मुझे मरा बोल तो राम हट हो ही जाएगा। चाहे कैसे भी बोलो, सीधा बोलो उल्टा बोलो, राम ही रहेंगे, है ना नहीं। चाहे स्टार्टिंग फ्रॉम माँ से करो या रास से करो, जब दो चार बार बोलेंगे तो अब सुने पड़ेंगे वो राम राम बोलता है ना नहीं। तो इस प्रकार उल्टी मंत्र दे करके और उनको इतने श्रद्धा हो गया, इस प्रकार के उनको लेसन दिए, तो उन्होंने डिटरमिंड होकर के दृढ़ होकर के बैठे और इस नाम को जप किए। उस नाम के प्रभाव से अब महर्षि वाल्मीकि बने, ये सारे लोगों में प्रसिद्ध है। उल्टी नाम जपते जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि उल्टा नाम जप करके ब्रह्मर्षि बन गए, ब्रह्म बन गए। अब सीधा आप लोग करते हैं लेकिन क्या ब्रह्म बोलेंगे कि ब्रह्म बनेंगे, कुछ तो बनेंगे टेढ़ी मेढ़ी कुछ भी लो, ये राम शब्द इतने प्रभावशाली है। तो इसे राम तारक नाम में पाप तारक पापनाशिनी मंत्र उसको दे करके अब वाल्मीकि जब ब्रह्मर्षि बन गए। उनका नाम वाल्मीकि क्यों पड़ा, पहले उनका नाम वाल्मीकि नहीं था, भद्रत्नाकर था। वाल्मीकि इसलिए पड़ा क्योंकि उन्होंने इतने दृढ़ प्रतिज्ञा लेकर के बैठे जप किए। हम लोग तो एक आसन से आधा घंटा से ज़्यादा बैठना मुश्किल है, लेकिन वो बैठे उठे नहीं, बोले मरूंगा मरूंगा, जो बोले ऐसे मरते रहता इसे लेकर बैठे। बैठ करके खाना पीना सुना छोड़ करके इस नाम को जप करने लगे। धीरे 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 जो कीट पतंग सब जहाँ बैठे थे वो देखे, बोले कि पता नहीं है तो उड़ता नहीं है, तो इसे चले। कीड़े मकोड़े कोई जिंदा आदमी बैठे तो उनके पास नहीं जाएंगे, लेकिन उनको कन्फर्म हो जाएगा कि ये तो पता नहीं जिंदा कि मरदा कोई है, तो फिर चलेंगे। तो वाल्मीकि शब्द संस्कृत का है, उनका अर्थ है जो दिमक होता ना, वाइट आंट, क्या बोलते दिमक ही बोलते ना, जो बाम्बी बनाते बाम्बी बोलते ना, ये बाम्बी शब्द वाल्मीकि बनाते इसलिए बाम्बी है, इसको वाल्मीकि बोला जाता है। जो दिमक की ढेर है ना उसको क्या बोलते हैं अपने, बाम्बी बोलता ना, हाँ वो संस्कृत में उसको बोलते वाल्मीकि। तो बनाते वो दिमक की ढेर को वाल्मीकि बोलते हैं। तो उनके ऊपर में इतनी लंबा समय है तो दिमक लाकर मिट्टी में ढेर बना दिए, उसके अंदर ही बैठे थे, उसी के अंदर रहे, वो हिले डोले नहीं। आपको थोड़ा सा चिट्टी कहीं आ जाए तो बाप रे बाप डिस्टर्ब हो जाएंगे अपने, लेकिन उनके अंदर जब वो दिमक ढेर बनाए होंगे रत्नाकर के ऊपर, कितने दिमक आए होंगे, कितने चढ़े होंगे चले होंगे उसके ऊपर और कंस्ट्रक्शन शुरू किए, मतलब लंबा समय चले। ऐसे थोड़ी कि अपना जेसीबी लगा लिए और ये लगा लिए क्या उसको जो मशीन, हाँ मशीन में फटाफट कर दिए, इतने जल्दी तो नहीं, फिर भी जल्दी करेंगे मशीन चलाएंगे तो हम बैठ ही नहीं सकते। लेकिन इतने सारे वाल्मीकि गण आए और आ करके उनके अमर अगणित रूप में आए होंगे, कितने इतने बड़े शरीर को पूरा कवर अप कर करके कितने बड़े दिमक ढेर बनाए होंगे, लेकिन तब तक वो थे लेकिन टस से मस नहीं हुए। आपने जब अविराम गति से चलते रहा, उसमें विराम नहीं दिए और किसी असुविधा फील नहीं कि बोले कुछ भी कोई कर जाए, इतने दूर पर नाम में थे। उनके ऊपर में उनके ऊपर में एक दिमाग लोग मिलकर के इतने बड़े बाम भी बना दिए, ढेर घर बना दिए अपना, और उनमें भी रहते थे लेकिन घर के अंदर वहीं बैठे थे। वो तो उनके भरोसा लेकर के, वो उनका बेस था, उन्हीं की बेस के ऊपर बनाए उन्होंने। साधारण तो कोई पेड़ क्या समथिंग पत्थर सब लेकर बनाते हैं बेचारे, उनको तो हो नहीं, उनका फाउंडेशन कोई धागा पुरते कुछ करे बेचारा तो है नहीं। आपको मालूम है दिमक लोग बर्न ब्लाइंड होते हैं, उनका आंख भी नहीं होता, दिमक जो होता ना व्हाइट हैंड, उनका आंख नहीं होता, बिना आंख में वो ऐसे। आप लोग इंजीनियरिंग स्टूडेंट फेल ना, उनके पास सीमेंट होता है ना, चूना होता है ना, कोई और केमिकल होता है कुछ नहीं, केवल मिट्टी, पानी कोई सप्लाई तो होता नहीं, केवल मिट्टी और उनके मुख से छोटी सी तो प्राणी है, उसके मुख से थोड़ा लाल निकलता है, वो लाल से मिट्टी से मिला करके क्या कंपोजिशन बनाते हैं उन्होंने, क्या मिक्सर बनाते हैं, तो वही बनाते हैं। हम लोग तो बड़ी बड़े बिल्डिंग बनाते हैं, वो भी आजकल हाईटेक सीमेंट लगा करके, वो सरिया आदि लगा करके, तो उसका गारंटी देते हैं भाई 100 साल तो डाउट है, 50 से 100 के अंदर ही उसका परमायु है घर का, है ना, नहीं इतने है वो बनाते जो। लेकिन वो जो केवल मिट्टी, पानी में नहीं मिला, कुछ नहीं उसमें डाला, आपने मुंह से लेकर के बनाया, वो हजारों साल आप जाकर देखो, तृतीया युग से वही तक बैठ होगा कोई बामी रखा होगा जंगल में, वो मिटता नहीं, और उसमें कोई मेटेरियल ही नहीं, केवल मिट्टी। क्या टेक्नोलॉजी उनके पास है, अब बेचारे अंधे हैं बनाते हैं, लेकिन वो बना दिए बाम्बी और रत्न आकर के बेस लेकर के वो बैठे थे, वो ही उसी का अंदर ही राम राम कर रहे थे, मतलब मरा मरा जपते थे लेकिन सुनाई तो राम राम पढ़ता था। इतने प्रभावित हुए, ब्रह्मा तक आना पड़ा, इतने सिद्ध हो गए, इतने महान हो गए, ब्रह्मरूप ब्रह्ममय हो गए, अभेद उनका रिलेशन हो गया, तो ब्रह्मा जी आकर के अपने कमंडल से जल छाट कर बाम्बी के अंदर से प्रकट हुए, इसलिए वाल्मीकि से प्रकट हुए थे, नाम उनका पड़ा वाल्मीकि, महान ऋषि वाल्मीकि, वाल्मीकि से पैदा हुए, दूसरे जन्म जो हुआ उनका वाल्मीकि के अंदर से, दिमक की धर से निकले, घर से निकले वाल्मीकि हुए, तो इतने राम शब्दों को साधन कर चुके थे राम नाम को। तो कहते हैं कि एक बार उन्होंने, तो ऋषि की तरह रहते थे महान, तो उनके एक शिष्य थे, उनका नाम था भरद्वाज जी, भरद्वाज ऋषि हुए ना प्रयाग में, तो वहाँ प्रयाग के पास वो भी रहते थे, रत्नाकर भी वहीं रहते थे, तो उन्होंने एक दिन गए तमसा नदी वहाँ से घूमने के लिए, तमसा नदी के पास प्रयाग से थोड़े और आ गए, तो वहाँ पे एक व्याध ने शिकार कर रहा था, तो एक क्रंच पक्षी, क्रंच मतलब क्रेन जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, बगुला, बगुला दो बगुला, एक सी बगुला एक ही बगुला, मतलब एक पुरुष और एक मादा, दोनों ने अपने नदी के किनारे थे, तो उन्होंने शिकारी ने बहलिया ने वो स्नान करके आ रहे थे महर्षि जी अपने शिष्य के साथ, तो इसने मैं बाण मारा, बाण मारा तो एक बाण लगा, दूसरा विकट होकर के जो देखा, ये दृश्य को देख करके महर्षि वाल्मीकि को बड़ा दुख हुआ, उन्होंने उनको साप दे दिए, दुख में उनको साप दे दिए, वो साप दिए तो वो जो साप उनके मुंह से उच्चारण हुआ लाइन, वो उसमें से छंद और अक्षर ऐसे डिजाइन होकर निकला, वो भी आश्चर्य, बोले मैं क्या बोल दिया, ऐसे भी फिटिंग कैसे हो गया, उसको बैठ कर सोच रहे थे, तो इसी में फिर उनके गुरु जी ने आए नारद जी, नारद जी से आकर के बोले ये तो बिल्कुल प्लान था, ब्रह्मा जी ये चाहते थे, तो आप उसको रचना करो, रचना। तब उन्होंने एक प्रश्न पूछे थे, तो जब नारद जी के और महर्षि वाल्मीकि की कथोपकथन हुआ कि कैसे उन्होंने व्याध को ये किए, तो उसका अर्थ तो कई प्रकार कई लोग करते हैं, लेकिन इस क्रोंच पक्षी के मृत्यु में उनको जो इंसिडेंट हुआ व्याध ने मारा था, इसी घटना से लेकर के उनके मुख से जो श्लोक निकल पड़ा, ये प्रथम छंद नवाखिर छंद के रूप में निकला, तो उसी से रामायण रचना करेंगे, लेकिन रामायण रचना उनके पास मैटर नहीं था, तो मैटर कैसे निकला ना, उन्होंने जब नारद जी उनके पास आए समझाने लगे, तो नारद जी की बात समझ करके एक प्रश्न उन्होंने किए महर्षि वाल्मीकि, बोले गुरु जी एक बात मुझे बता सकते हैं क्या, ना अभी इस सृष्टि में इस समय ऐसा कोई व्यक्तित्व है जो ऐसे गुण वाले हो, जो ऐसे हो, ऐसे हो, ऐसे महान हो, संदिन जो सब उसको आलोचना करेंगे वो क्या पूछे थे, तो ऐसे कोई व्यक्तित्व है क्या मुझे बताएं, तो देवर्षि नारद जी ने उनके उत्तर में राम की कथा सुना, बोले हाँ है। रघुवंश में दशरथ के पुत्र के रूप में ऐसे ये थे या होंगे या है, जो भी टेंस चेक करके सब देख लेना काल में, लेकिन देवर्षि जी ने बताया तो उसको सुनकर और भी बताया कि ब्रह्मा जी चाहते थे सरस्वती अपने वक्ष बैठ करके निकाले, तो इसी से इसको वर्णन करो उनके चरित्र। तो गुरु जी से सुन लिए उन्होंने राम के चरित्र, देवर्षि नारद ने सबसे पहले वाल्मीकि को बताया, महर्षि वाल्मीकि को बताया, तो उनसे सुन करके बोले इसी छंद में लिखो, जो छंद बोलो सम्पल, तो इसी छंद में उन्होंने लिखे। लिख करके जो कंप्लीट हुआ पूरे लिख लिए सारे, जो सुने थे गुरु जी से सब लिख लिए उसको, उनके पास क्षमता तो था ही, गुरु कृपा से भगवती इच्छा से सरस्वती, लिख करके बोले जो कोई रचना कोई किताब अगर प्रोड्यूस करते हैं, चाहते हैं कि लोग में प्रचार हो, डिस्ट्रीब्यूशन भी हो ना, तो बोले कौन करेगा कैसे करेगा, मैं एक छंद में लिख लिया संगीत, तो तब तक माता सीता आ चुके थे, उनके पुत्र तपोवन में वाल्मीकि तपोवन लवकुश हुए थे, तो उनको वो पढ़ाते थे महर्षि वाल्मीकि ने पढ़ा करके फिट किए थे सारे प्रकार के विद्या, धनुर्विद्या आदि कई प्रकार के विद्या उनको सब दे चुके थे, लेकिन अभी उनको ये रचना कर सोचे कर ये कोई गायन कला भी सिखाते। वो दोनों लड़के आए तो देख कर बोले ये दोनों होनहार है, अच्छा गाते हैं और सारे कोर्स कंप्लीट कर चुके हैं, लेकिन ये उनको सिखाऊं और सीख करके गाएं, तो उनको ट्रेनिंग दिए महर्षि वाल्मीकि ने, रामायण को उन्हें सीख लिए, सीख कर याद करके गाने लगे। गाने लगे तो बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब सुन करके इतने प्रसन्न हो रहे थे, वो छोटे बालकों को दोनों को उपहार भेंट देने लगे। तो एक बार कई ऋषि महर्षि लोग, अब तृतीया युग में यज्ञ होता था, यज्ञ में भाग लेने के लिए अयोध्या जा रहे थे, तो उन दो बालों को बोले बोले चलेंगे बेटा हम यज्ञ में जा रहे हैं, बड़े दक्षिणा मिलेगा राजा घर के यहाँ, तो बोले चलो। वो तो उनके साथ संकत उनके साथ चल पड़े, जाते समय जैसे सिटी में प्रवेश किए बोले गाओ, तो उन्होंने शुरू किए गाना, और उस चरित्र को सुन करके अयोध्या सिटी के निवासी लोग सब आकर्षित होकर के सुनने लगे, इतने प्रसिद्ध का लोग काम धंधा छोड़कर सुनने लगे रामचरित को, इतने प्रभावशाली था। तो धीरे धीरे भगवान राम के राजदरबार में कान दो लड़के आए, इतने सुंदर गाते हैं, इतने सुंदर गाते हैं, तो भगवान राम ने बुलाए उनको, तो मुनिमंडली के साथ मुनिकुमार, मुनिकुमार थोड़ी तो आपके ही कुमार है, राजकुमार है, मुनिकुमार के रूप में थे तो राजकुमार, राम के कुमार थे, राम कुमार थे, तो उनको बुलाए और अयोध्या के राजभवन में राज दरबार में उन्होंने पेश किए अपने गान। तो इससे रामायण शुरू हुआ था। इसमें महर्षि वाल्मीकि ने जो रचना किए थे, कई रचना तो उनके प्रेजेंट टेंस में है कि अभी है, राम तो थे ना तभी सुन रहे थे जो घटना घट रहा था, क्योंकि पूछे थे कोई अब तक है क्या धरती पर, वो थे भगवान राम तो उनके चरित्र प्रेम, लेकिन कुछ ऐसे भी लिखे हैं जो हो हुआ नहीं था अभी तक होगा, उसको भी लिख चुके थे भविष्य काल में भी, वो सब त्रिकालदर्शी महात्मा होते हैं तो इसे लिखे थे। तो इस प्रकार रामायण की शुरुआत से इस प्रकार होता है, और आगे चल करके राम अयन, राम के घर, राम के भवन, अयन मतलब स्टोर, जिसमें राम ही राम है पूरे रामायण में, तो उसको महर्षि ने सात खंड में लिखे, सात कांड में, सप्तकांड होता ना रामायण सप्तकांड, तो सात कांड में एक तो है सबसे शुरुआत होता बाला कांड से, फिर उसके बाद अयोध्या कांड, दो तीसरा होता है अरण्य कांड, चौथा होता है किष्किंधा कांड, पांचवा होता है सुंदर कांड, छठा कलंका कांड या युद्ध कांड कहो, और सातवां होता है उत्तरकांड। इस प्रकार सप्तकांड विशिष्ट और रामचरित को उन्होंने कंप्लीट लिखे थे, और उसके बाद इतने उसके प्रचार प्रसार हुआ, इतने प्रचार प्रसार हुआ कि क्या कहें। कई कई जगह में तो उनको बोलते रामायण सतकोटि अपारा, सौ करोड़ों से और भी ज्यादा रामायण लिखा गया है। आप और हम तो दो तीन जानते भी होंगे, लेकिन जो जानकार लोग हैं बोलते सौ करोड़ वैरायटी के रामायण है। शंकर भगवान सब जानते हैं उसको, उनका मेन प्रोड्यूसर वही है, उनसे पब्लिशर है, तो उनके साथ बोलते हैं कितने रामायण हैं। तो इसे ही मैंने एक कथा सुना था, सब लोग आए, सारे लोकवासी आए शंकर भगवान के पास, क्योंकि मेन प्रोड्यूसर पब्लिशर वही थे। बोले हमको भी रामायण दे दो, हमको भी रामायण दे दो। डिस्ट्रीब्यूशन बुक डिस्ट्रीब्यूशन करने लगे, बोले हमको इतने चाहिए, हमको इतने चाहिए। तो भगवान शंकर ने बांटने लगे रामचरित जो लिखा गया था, अभी तक जितने खंड लिखे थे सब बोले हम कितने ये खाना बांटने लग करके सारे ब्रह्मांड के सब प्रकार लोगों को बांटते 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 अब देते रह गए थे। तो वो कुछ बच गया, वो बांटने हो रहा, उसको फिर तोड़ तोड़ कर बांटे, फिर तोड़ तोड़ करके आधा आधा अध्याय अध्याय करके लगे ऐसे करते, फिर भी नहीं बनता। बोले और भी चाहिए और चाहिए, अंत में बोले और यही नहीं बच रहा है। बोले छोड़ो भाई, सब दे दिया, इतने तो छोड़ दो। कितने बच गया कि बोले दो अक्षर बच गया था उनके पास। बोले दो ही अक्षर मेरे पास, छोड़ दो बाकी सब। सौ करोड़ रामायण को बांटते 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 किसी को मन नहीं भरा, इतने लोग चाहते थे। तो अंत में भगवान शंकर सब बांट करके बच गया था दो अक्षर, तो उनके लिए रख लिए। वो दो अक्षर कौन है? राम। ये उनका पास रखे, बोले मैं ही रखता हूँ बाकी आप सब। सौ करोड़ रामायण बांट दिए उन्होंने, तो बोले सारे इसी में ही है, तो सारे राम में है, सारे राममय है, इसलिए राम अयन रामायण, जिसमें राम ही राम रमे हुए हैं वही रामायण है। तो सप्तकांड तो हमारे तीन दिन है, तीन दिन में भी तीन दिन नहीं होगा, डेढ़ दो घंटा शायद मिलेगा। तीन घंटा रियली? मुझे कोई बताएगा, सात से नौ, चार से सात, फिर आप ही लोग बैठेंगे, इतनी श्रोता रहेंगे कि उससे कुछ कम हो सकते हैं? हाँ हाँ, मैं सब वो तो मैं समझ रहा हूँ, 4:30 नहीं 5:30 तक जाएगा। 4 बजे इतनी धूप रहता है, आप ही लोग नहीं आएंगे रूम से 4 बजे? मुझे तो यही मैसेज मिला था कि 7:30 से 9:30 करें या 7 से 9 करें, क्या करें? मैं बोला भाई देखो क्यों इसे ना, 7 को संध्या आरती होता है, गौर आरती, गौरंग महाप्रभु है उनका आरती तो होना चाहिए ना, वो होगा तो फिर 7:30 से करें, 7:30 से 9 चलेगा? चले, यही मुझे बताया गया था, लेकिन अब तो वो बिल्कुल उल्टा पलटा करके और 4 से 7 कर दिए। मतलब ले दे कर घंटा भर होगा, तीन दिन में 3 घंटा होने का आशा है। कैसे भी करो, हम तो आपके सेवक हों भाई, लेबर को जैसे काम में लगा हमारा क्या है, बेटी कटना है, जो टाइम में आप काम लेना है लो, है ना, ना? हम तो लेबर है ना, ना? तो किस समय सेवा में लेना चाहते हैं आप अपना तय कर लीजिए। तो त्रिदिवसीय अब आप ही देखते हैं राम। मैं तो सोच रहा था राम के कहाँ से शुरू करें, कौन सा प्रसंग लें, किसकी चर्चा करें। यद्यपि किसी प्रसंग की चर्चा के लायक हम है ही नहीं, वहाँ अयोग्य है अधम, लेकिन फिर भी आपके सामने बेशर्म आकर बैठ गया हूँ। तो अब आप लोग जैसे आप काम लेना चाहेंगे ले सकते हैं। हरे कृष्ण, जय श्री राम। हाँ? क्या आज से कि हनुमान जी के है उसमें, हनुमान जी भगवान के भक्त में सबसे वरिष्ठ हुए, भक्तचरित यद्यपि भरत जी को महान भक्त थे, लेकिन हनुमान जी जिस प्रकार के महति कर्म की अद्भुत कर्मणा अद्भुत कर्म की, तो और इसलिए हनुमान जी को प्रसन्न करना, हनुमान जी के चरित्र समझाना, कांड केवल हनुमान जी के चरित्र बनना है और कुछ नहीं। तो लोग चाहते हैं कि काम बनता है इसमें से, है ना, नहीं तो लोग सब चाहते हैं ना अपना मनोरथ पूरा करने के लिए, तो इसलिए उसको चूस के, है ना, नहीं। और बाकी सारे में कोई दुख वर्णन है, ये सब है, परेशानी रस, ये रस ठीक है, केवल सक्सेस सक्सेस है उसमें, फटाफट काम बनता है आसान से, तो इसलिए इसी को चुनने लगे करते हुआ। ये बड़े सुंदर है, बाकी सब असुंदर को क्यों चुने हुए, रोना धोना पड़ता है, है ना, नहीं तो ये सब असुंदर, ये अच्छा है। जी सठा तो ही है ना, ना युद्ध कांड है, युद्ध कांड या लंका कांड कहीं में, सातवां उत्तर कांड है, युद्ध कांड लिखा है मेरे ख्याल में, वाल्मीकि रामायण में युद्ध कांड कहा गया और मानस में लंका कांड कहा गया उसको, और बाकी कांड सब लगभग समान ही है। खीर के डिस्ट्रीब्यूशन, नहीं नहीं नहीं, सीधा कौशल्या को 50% दिए, सीधा कौशल्या को 50% दिए, बाकी 50 बच गया, 50 को 25% दे दिए कैकेयी को, बाकी जो ऐसे में सुना, बाकी जो 25% बच गया तो उसको भी उन्होंने, शायद सुमित्रा थी नहीं तो उन्होंने कहीं गई थी उस समय जैसे बांट रहे थे, तो उन्होंने भी फिर देखे कि सुमित्रा को बोले नहीं था, तो वो जो 25% उसको आधा आधा करके 12.5 उन दोनों को दे दिए, लेकिन वो बोले कि नहीं हम तो लिए हैं, वेट करते हैं वो आएगा उनको देंगे, क्योंकि सुमित्रा जी थी एक्चुअली ऐसे कि मदंती है, मैंने सुना हूँ कि भगवान दशरथ के, भगवान के जन्म से पहले जो दशरथ महाराज के शादी हुआ, सबसे पहले कौशल राज कन्या कौशल्या से जो शादी हुआ, तो रावण को पता चल गया था, रावण तभी भी था, रावण को पता चला कि कौशल्या नंदन जो होगा मुझे मारेगा, मेरा वध करेगा, तो इसलिए बोला उसको कौशल्या के बेटा होने ही नहीं देंगे, बोले शादी हो रहा है उसका, शादी से पहले उसको गायब कर लिया, चुरा लिया, हरण कर लिया कौशल्या को रावण ने, कौशल राज को ऐसे गुप्त रूप में आया, आ करके जिस दिन बारात निकल चुका था, दशरथ महाराज का बारात निकल चुका था और जाके पहुंचने वाला, शादी के सारे तैयारी हो रहा है और सज धज करके कौशल्या को बैठाए थे, अरे वो जा करके कैसे सूक्ष्म रूप में, कैसे रूप में जाए कौशल्या को, उनके सब तो बिजी हैं कोई देखे नहीं, उनको उठा कर गायब करके ले गए, गायक वर्क ले जा करके रास्ता में एक कोई मंदिर था, मंदिर में उसको लग कर बाहर से लग करके चला गया, लग कर चला, बोले पड़ा होगा शादी हो जाएगा, शादी शादी उनका शादी नहीं होगा तो बेटा तो होने सवाल ही नहीं उठता, और वहीं उसका अंदर लेकर क्या करूँ, मरेगी इसके अंदर क्या फिक्र, मर जाएंगे, उसको लॉकअप करके चले गए, रावण चला गया। तो दशरथ महाराज को बारात पहुँचा, बारात पहुँचा जब बहू को लाओ वेदी में, बहू को जाए देख बहू एब्सेंट, कौशल्या माल खाली है नहीं उसमें, अरे भाई कैसे होगा, क्या हो हल्ला मच गया, अरे भाई बर आ चुका है, बरात आ चुका है, इतने बड़ा फीस्ट भंडारा सब कुछ मंत्र, अरे वो बड़े ये की बात है, बदनाम की बात है, कहाँ गए हो हल्ला चिल्लाने से, और क्या होगा। तो कौशल्या की छोटी बहन की नाम थी सुमित्रा, तो बोले चलो भाई कौन देखता है, क्योंकि हमारा दिखाने फोटो फोटो देखेंगे अलबा, तो उन्हीं को बैठा दे, लेकिन उनको सजा था चक्कर को उन्होंने, उनको बैठा दे, सुमित्रा की शादी करवा दे, सुमित्रा का चैस नहीं था, उन्होंने जब उनको शादी कर दी, दीदी नहीं, दीदी की एब्सेंस रे सुमित्रा को बैठा के शादी करवा दी, शादी कराओ कर वो अभी तक अवगुंठन में थी, मतलब घूंघट में थी, शादी करके दूसरे दिन फिर विदाई हुआ, विदाई उदा करके एक तो कौशल्या के एब्सेंट, दूसरा उनके एब्सेंट, दोनों से विदाई, डबल रो रो करके विदा किए, विदा करके आए दशरथ महाराज, आ करके जहाँ जिस मंदिर में उनको लकअप करके रावण ने छोड़ के चला गया था, उसी मंदिर में शाम हुआ वहीं रहने लगे, आज यहीं रुकते हैं कल चलेंगे, वहीं रुके, अब वो खाए पिए बिना अंदर से दरवाज़ा पीट कर होती रहती है कौशल्या दी, वो तो बिल्कुल शादी के लिए क्या बोलते हैं, मंगनी कर दी, मंगनी समझते ना, शादी के पहले जो बेटी की शादी होता है उनको देवी पूजा करवाते हैं। हाँ सकाई तो बहुत दिन पहले, अभी शादी होने वाला है, घंटा दो घंटा पहले, घंटे दो घंटा बाद शादी होगा, तो मंगनी करते मन उनको सजाते हैं और मेहंदी लगाते हैं और साड़ी पहनाते हैं, सुबह ना सजावट, उसको मंगन कहते हैं। ये हो चुका था सारे, अभी तो लेने वाले थे, अल्ट्रा में लेने वाले थे, बरात बैठा है, तो मतलब बाकी सारे मेहंदी लगाना और पूजा सजावट फेरा बांधना ये सब कर दिया ना, फेरा क्या बोलते हैं जो एक बांधते हैं सेरा, अरे अच्छा हाँ सेरा, शायद सेरा होगा, फेरा तो घूमने को फेरा बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ तो जो हो सेरा फेरा जो भी बांध बूंद करके सब रेडी करके बोलते हैं उसको, और देवी पूजन अग्रह कर कर के आ करके सब कर चुके थे और वो गायब हो गए, मिल नहीं रहे, तो उनको तो थोड़े डुप्लीकेट बैठा देते उनको। तो वो आए दशरथ महाराज के अंदर, दरवाजा बाहर से बंद है, अंदर से चित्कार, कोई स्त्री के बिलाप सुनाई पड़ रहा है, तो दरवाज़ा तोड़ो खोलो। दरवाजा तोड़ करके जब देखे, विकल होकर के रोती हुई इस बिल्कुल वर्ण मतलब बर कन्या के रूप में बिल्कुल सजित थी, इस अवस्था में विकल होकर रो रही थी, और कौन जाने को निश्चित सुमित्रा ने जाकर, अरे दीदी आप दीदी आप, तब उन्होंने रो करके बोली, बोली यही के उन्हीं का साथी होना था, मेरा तो था नहीं प्रपजाल मैं तो यही सही मुझे बैठा दिया आ गया, मुझे शादी होने का उन्हीं के था, दर्शन मैंने कौशल्या के था, कौशल्या ये है, मैं उनके बहन रियली चलो दोनों को लेकर आया, एक को पहले से शादी हो चुका था, मैंने डिमांड उनका था, लेकिन एक बाई मिस्टेक हो गया, फिलअप द गैप, तो दोनों को लेकर के आए, दोनों को लेकर के आए, तो समझा तो असली रानी तो उन्हीं को बोले, पाठ रानी करके उन्हीं को स्वीकार के बोले, मैं उन्हीं के लिए आया था, वही पाठ रानी मिले, तो पाठ रानी के रूप में उनको स्वीकार किए कौशल्या को, तो उनके बहन के रूप में वो भी गई चल, तो फिर वो दोबारा उनको शादी हुआ था फिर कैकेयी के साथ। तो ऐसे कहते हैं कि कैकेयी भी आपके साथ एक असिस्टेंट लेकर आई थी मंथरा, तो ऐसे कौशल्या के साथ उनकी बहन आई थी, तो उनका तो बहन नहीं थी मंथरा, जो भी हो उनके साथ बड़े चतुर नारी थी, चतुर नारी वो आई थी, तो इसलिए जो सुमित्रा जी थी वो दोनों को सेवा करती थी राजभवन में, दो मुख्य रानी के रूप में, क्योंकि कौशल्या तो पट रानी थी और कैकेयी जो थी बड़ी सुंदर थी, वीरांगना थी, तो इसलिए दशरथ महाराज उनको भी बहुत पसंद करते थे, तो इसलिए सुमित्रा देवी ने वो दोनों को सेवा करती थी, कौशल्या की भी और कैकेयी की भी, तो इसलिए दोनों उनके प्रति सौहार्द रखते थे। तो राजा को बोले नहीं, राजा बोले ठीक ठीक हम ले लेंगे करके, पहले तो उनका जो दिए थे राजा ने उनको खा लिए, जो बाकी जो दो भाग मिला था 12.5 12.5, तो उनको वो भी सुमित्रा ने ना कैकेयी ने सोची मैं सुमित्रा को दे देंगे, वो आएंगे बेचारे, वो भी तो एक रानी की तरह है, आपके साथ रहती है, उनका भी तो मन में इच्छा होगी पुत्र की, तो उनमें भी इतना दे दूँ वो भी प्राप्त करेंगे, तो वो भी यही सोचे, कौन कौशल्या भी सोचे वो मिले थे उनको भी दूँ, उनको भी मनस्कामना पूरा, तो दोनों ने अपना अपना जो 12.5 12.5%, वो जब जैसे सुमित्रा जी उनको देने लगे, वो बोलते थे देवी आपके आपके नहीं नहीं नहीं, तुम भी तो हमारे साथ रहता है, तुम इतना लो, तुम भी अपने सुख प्राप्त करेंगे, संतान सुख प्राप्त करेंगे, आपको भी तो कोई संतान नहीं, तो लेकिन वो नहीं करती थी, वो अपने सेवक के रूप में चाहती, तो वो देते समय ही बताए थे, जब कौशल्या ने दी बोले देखो तुम जैसे मेरे अनुगत होकर रहती हो, मेरी सेवा करती हो, तुम्हारा जो पुत्र होगा मेरे पुत्र का भी अनुगत रहेगा, ये लो, कैके भी यही बात कही, तुम जैसे मेरे अनुगत होकर के रहती हो, मेरी सेवा करती हो, तुम्हारा जो पुत्र होगा मेरे पुत्र का भी इस प्रकार अनुगत होकर रहेगा। तो दोनों ने जो उनका शेयर उनका स्वर्ज दिए उनको लेकर, तो उनके जो दो बेटे हुए दोनों ही अपना अपने बंट गए, एक भरत के अनुगत एक रामानुगत, वैसे हम समझते इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था। ओके बाकी सुबह शाम अगर करें तो और चार पर्याय होगा, श्रोता तो इसमें होंगे या इतने कम घट सकते हैं, श्रोता मतलब चार सेशन हो सकता है, बढ़ेंगे चार से सात बढ़ेंगे, सुबह बढ़ेंगे,
शाम को भी बढ़ेंगे धीरे धीरे,
धीरे तो दो ही दिन तो बाकी है, धीरे धीरे को ना, तो धीरे करते करते खत्म हो जाएगा डेट। ठीक है, देखते हैं भाई, जो माल आएगा, जो माल से जो निकलेगा वही तो माल होगा, है ना। नहीं, भगवान राम जो खंटी विष्णु तत्व है, तो उनसे जो निकलेगा और क्या निकलेगा, डुप्लीकेट हो सकता क्या। भगवती और भगवान दोनों ही तो है, तो उनमें से और कैसे कुछ दूसरा हो सकता। तो भगवत तत्व तो है ही, ये तो उसमें वर्णन नहीं है मानस में, लेकिन रामायण तो वर्णन होता है कि तो इतने महावीर हुए लोग, कुछ बचपन के समय से लक्ष्मण आदि को हरा दिए, आप तो सुने होंगे ना भाई, उत्तरकांड में जो वर्णन आता है, घोड़ा को बांध के रख लिए, तो ये कोई साधारण कर सकता है भगवान को, तो सब शेषावतार आदि थे, उनको हनुमान जी को अरेस्ट करके बैठे थे, चुप बैठो। तो कोई साधारण तो नहीं कर सकता ना। हाँ जी बोलो, किसका। हाँ वही दो जमज संतान हुए थे, जुग्म पुत्र दो हुए थे, उसका नामकरण कुछ ग्रास को तोड़ के किए थे, आधा आधा करके, इस प्रकार से लव कुछ कहते हैं छोटा बड़ा, लेकिन दोनों ही जैसे उनके पिताजी लोग दादाजी लोग सब एक ही दिन में, सभी का बर्थडे एक ही है, इन दो लड़के का बर्थडे एक ही है, एक ही समय एक ही समय एक साथ में पैदा हुए थे, जमज संतान है। मैंने तो आपसे सुन रहा हूँ, मेरा ख्याल में जितना तब तक मैं सुना था, मैं पढ़ा नहीं वाल्मीकि में, चेक करने से होगा रामायण में, कि जमज पुत्र हुए थे, जुग्म पुत्र, भागवत में शायद आएगा वर्णन उसका, लव कुश दो पुत्र हुए थे पिताजी के, है ना। तुलसीदास जी वाल्मीकि अवतार, ऐसे ही वर्णन मिलता है, वाल्मीकि ने स्वयं तुलसीदास बनकर कहा, क्योंकि रामचरित्र का प्रणेता वाल्मीकि है, तो चाहे आपको लोकल भाषा में मानस के रूप में करे, चाहे संस्कृत भाषा में देवताओं के लिए करे, वाल्मीकि प्रोड्यूसर है उनके, है ना। अलाव नहीं हो सकता है, आप अगर पढ़ना चाहते तो चुपचाप पढ़ लो, दिखा मत किसको, है ना। नहीं मानो ठीक है, अलाव नहीं, लेकिन प्राइवेटली तो कर सकते ना, ऐसे ऑफिशियली नहीं है तो प्राइवेटली, है ना। ओके, और कुछ, समय ज्यादा हो गया आपका,
कि